वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम अध्याय दूसरा, नहीं स्कंद दूसरा, अध्याय नौवा, श्लोक क्रमांक 44। तस्माइदं भागवतम पुराणं दशलक्षणं प्रोक्तं भगवता प्राह प्रीतपुत्राय भूतकृत। तस्माइदं भागवतं पुराणं दशलक्षणं प्रोक्तं भगवता प्राह प्रीतपुत्राय भूतकृत। तस्माइदं भागवतं पुराणं दशलक्षणं प्रोक्तं भगवता प्राह प्रीतपुत्राय भूतकृत। तस्मै तत्पश्चात इदं यह भागवतम, भगवान की महिमा अथवा भगवत ज्ञान, पुराणम उपवेद, दशलक्षणम दस विशिष्टाएं, प्रोक्तम वर्णित, भगवता भगवान द्वारा, प्राह कहा, प्रीत संतुष्ट होकर, पुत्राय पुत्र से, भूतकृत ब्रह्मांड के सृष्टा। अनुवाद और तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। तत्पश्चात पिता ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद को श्रीमद् भागवत नामक उपवेद पुराण कह सुनाया, जिसका वर्णन श्री भगवान ने उनसे किया था और जो दस लक्षणों से युक्त है। तात्पर्य, यद्यपि चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया गया था, किंतु वह दस लक्षणों से संपन्न था, जिनकी व्याख्या अगले अध्याय में की जाएगी। चार श्लोकों में पहले यह बताया गया है कि सृष्टि के पूर्व भगवान का अस्तित्व था, अतः श्रीमद् भागवत का शुभारंभ वेदांत सुक्ति जन्माद्यस्य से होता है। यद्यपि जन्माद्यस्य शुभारंभ है, तो भी जिन चार श्लोकों में यह वर्णित है और जिनमें कहा गया है कि भगवान सृष्टि से लेकर भगवत धाम तक प्रत्येक वस्तु के मूल हैं, उसमें दस लक्षणों की व्याख्या हुई है। मनुष्य को गलत व्याख्या करके यह भूल नहीं करनी चाहिए कि भगवान ने केवल चार श्लोक कहे थे, अतः शेष 17,994 श्लोक व्यर्थ हैं। इन दस लक्षणों की समुचित व्याख्या के लिए, जैसा कि अगले अध्याय में बताया जाएगा, न जाने कितने श्लोकों की आवश्यकता होगी। ब्रह्मा ने नारद को पहले यह भी सलाह दी थी कि उन्होंने जो उपदेश दिया है उसका वे विस्तार करें। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी को संक्षेप में इसका उपदेश दिया, किंतु शिष्य रूप गोस्वामी ने इसको अत्यधिक विस्तार दिया। इसके बाद इसी विषय को जीव गोस्वामी ने और फिर श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने विस्तार दिया। हम इन्हीं अधिकारियों के पदचिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। अतः श्रीमद् भागवत न तो कोई साधारण उपन्यास है, न ही संसारी साहित्य। इसकी शक्ति अपार है, इसे अपनी बुद्धि के अनुसार चाहे जितना बढ़ाया जा सकता है। इससे भागवत का अंत नहीं होगा। श्रीमद् भागवत भगवान की वाणी का प्रतिनिधित्व करता है, अतः इसे चाहे चार श्लोकों में कहा जाए या 4 अरब श्लोकों में, यह एक जैसा है। ठीक वैसे ही जैसे भगवान अणु से भी सूक्ष्म और अनंत आकाश से भी विस्तृत हैं, श्रीमद् भागवत की शक्ति ऐसी ही है। तस्मा इदं भागवतं पुराणं दशलक्षणं प्रोक्तं भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय भूतकृत। तत्पश्चात पिता ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद को श्रीमद् भागवत नामक उपवेद पुराण कह सुनाया, जिसका वर्णन श्री भगवान ने उनसे किया था और जो 10 लक्षणों से युक्त है। ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद मुनि को भागवत का उपदेश दिए, जो कि उन्होंने स्वयं श्री भगवान से सुना, और ब्रह्मा जी ये योग्य बने स्वयं श्री भगवान के श्रीमुख से भागवत सुनने के लिए उनकी तपस्या के द्वारा। तो ये प्रश्न उठ सकता है कि कोई यदि तपस्या करे तो भगवान के श्रीमुख से भागवत सुन सकेगा क्या? तप ये किसी को योग्य बनाता है भगवान के श्रीमुख से भागवत सुनने के लिए? क्या उत्तर है? ब्रह्मा जी ने तप किया, तप उनको कहा गया तप करने के लिए, ऐसा नहीं कि वो स्वयं से कोई तपस्या शुरू किए, उनको कहा गया। और किसने कहा? स्वयं भगवान ने कहा। तो जो भगवान ने कहा ब्रह्मा जी ने यथारूप किया, और भगवान फिर दर्शन दिए अपना, और भगवान ने भागवत का उपदेश ब्रह्मा जी को सर्वप्रथम सुनाया। इस अध्याय के शुरुआत में एक श्लोक आता है, जब भगवान अपना दर्शन दे रहे हैं ब्रह्मा जी को, और उस श्लोक में कारण बताया गया है कि भगवान ने ब्रह्मा जी को दर्शन क्यों दिया। केवल ब्रह्मा जी की तपस्या के वजह से भगवान ने दर्शन नहीं दिया। ब्रह्मणे दर्शयन रूपम अव्यलीक वृत आदृत। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ब्रह्मणे अर्थात परब्रह्म दर्शयन, उन्होंने अपना दर्शन दिया, दर्शयन रूपम अर्थात सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि परब्रह्म ने अपने स्वरूप का दर्शन, अर्थात ये नहीं समझना चाहिए कि परब्रह्म का दर्शन कोई ज्योति का दर्शन हुआ, इसलिए वो कहते हैं ब्रह्मणे दर्शयन रूपम, उनका रूप था, रूप का दर्शन ब्रह्मा जी को हुआ। तो भगवान ने दर्शन दिया, और इसी श्लोक में अंतिम पंक्ति में कहते हैं अव्यलीक वृत आदृत, जो वृत ब्रह्मा जी ने लिया था उस वृत के वजह से परब्रह्म ने अपने रूप का दर्शन ब्रह्मा जी को दिया। परंतु बहुत महत्वपूर्ण शब्द ये है अव्यलीक। अव्यलीक का अर्थ है बिना किसी भौतिक हेतु के जो तपस्या ब्रह्मा जी ने की, अर्थात केवल तपस्या नहीं, अहैतुकी तपस्या। ब्रह्मा जी अब वो पैदा ही हुए थे, तो जैसे कोई शिशु पैदा होता है तो बहुत नासमझ होता है और मासूम होता है, और कोई एजेंडा नहीं होता है छोटे बच्चों का कि माता पिता से या मैं पैदा हुआ हूं तो मुझे क्या क्या प्राप्त करना है, क्या क्या मेरे हेतु हैं अब पैदा होने के। इसलिए एक छोटे बच्चे में देखा जाता है, क्यों हर एक व्यक्ति छोटे बच्चों से प्रेम स्वाभाविक रूप से करता है, क्योंकि अव्यलीक, एक छोटे बच्चे का हृदय बिना किसी हेतु के रहता है, विदाउट एनी अल्टीरियर मोटिव्स, हिडन एजेंडा। इसलिए चाहे छोटा बच्चा कुछ भी करे, कोई उसको उस प्रकार से डांटता नहीं जैसे कोई बड़ा व्यक्ति गलती करता है, तो बड़े व्यक्ति को डांट फटकार मिलती है किसी दूसरे टोन में, परंतु छोटा, जितना छोटा शिशु हो वो जितनी भी बड़ी गलती करे वो बेकसूर रहता है। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं इसके मन में कुछ नहीं है ऐसा। कोई गोद में लिया छोटे बच्चे को और उसने गोद में, उस व्यक्ति के गोद में मलमूत्र त्याग दिया, तो अब क्या उसे जेल में बंद करोगे? या उसके जेब से 100 रुपया निकाल लिया, उसने गोद में रखा है, उसके जेब से 100 रुपया निकाल लिया, तो क्या उसे जेब कतरा कहोगे? नहीं, क्योंकि सब जानते हैं कि ये मासूम है, अव्यलीक, इसका कोई गलत हेतु नहीं है कुछ भी करने के पीछे। तो ब्रह्मा जी वो पैदा होते ही उनको जब कहा गया तप, जैसे छोटे बच्चे को आप कहीं पर भी सुला दिए वहां पर उससे सोना है, छोटे बच्चे को कहां पर भी लेके जाइए वो वहां पर माता पिता के साथ जाता है, तो वैसे ब्रह्मा जी ने यथारूप जो तपस्या की, उस तपस्या के वजह से, अव्यलीक व्रत के वजह से ब्रह्मणे रूपम दर्शयन, परब्रह्म ने अपना दर्शन दिया। न केवल दर्शन बल्कि भगवान ने दिव्य भागवत का संदेश सुनाया ब्रह्मा जी को। अब ब्रह्मा जी की तपस्या जिसके विषय में हमने अभी चर्चा की, उसका स्वरूप क्या था? तो एक साधक की तपस्या का स्वरूप क्या होना चाहिए, ब्रह्मा जी सिखाए। हम सब इस्कॉन में साधना भक्ति कर रहे हैं तो ब्रह्मा जी जो हमारे फाउंडर आचार्य हैं, ब्रह्म मध्व गौड़ीय गुरु शिष्य परंपरा जिसमें हम हैं, तो हमारे इस संप्रदाय के फाउंडर आचार्य ब्रह्मा जी अपने उदाहरण से हमें सिखा रहे हैं कि हमारी जो साधना है, अर्थात जो तपस्या हम कलयुग में कर रहे हैं, क्या तपस्या है? 16 माला और 4 नियम, शुरुआत इनसे है। तो ये तप कैसा होना चाहिए? अव्यलीक, विदाउट एनी अल्टीरियर मोटिव। ये नहीं कि 16 माला मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे दीक्षा मिल जाएगी, या 4 नियम मैं इसलिए पालन कर रहा हूं क्योंकि खर्चा बचेगा, या स्वास्थ्य के लिए अच्छा है आजकल शाकाहारी होना, कांदा लहसुन का भाव बढ़ते जा रहा है, चाय पत्ती भी बहुत महंगी हो रही है, इसलिए ये सब मैंने छोड़ रखा है, और डॉक्टर ने भी बोला है मेरे लिए ठीक नहीं सिगरेट गुटखा ये सब लेना, ये सब हेतु नहीं हमारे तप का। या फिर जब हम दीक्षा ले लेते हैं या भक्ति में प्रगति थोड़ा कर लेते हैं, तब फिर क्या हमारे तप करने का उद्देश्य ये है कि हम कैसे भक्त समुदाय में एक नाम हासिल करें, इमेज, कि इतने वर्षों से मैं 16 माला जप कर रहा हूं, इतने वर्षों से मैं 4 नियम पालन कर रहा हूं, और मैं जैसे 4 नियम पालन करता हूं, बहुत कम लोग वैसे 4 नियम पालन कर सकते हैं। जितनी कठोरता से मैं 4 नियम का पालन करता हूं, मैं जानता हूं अन्य भक्त 4 नियम तो पालन करते हैं, परंतु वो दूध वाले के दूध के समान है, कितना पानी उसमें होता है। और मेरे जो 4 नियम हैं वो बिना पानी का दूध। तो कई बार हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम भक्तों में कैसे हमारा एक इमेज स्थापित करें, कि हाँ सभी मेरा गुणगान करते रहें इनके वजह से। अब देखिए, बाहर अक्सर आप यदि किसी से कहो कि आप ये नहीं करते वो नहीं करते, तो लोग आपका इतना गुणगान नहीं करेंगे, उनको लगता है कि ये व्यक्ति ये बहुत ही दुखी जीवन जी रहा है। कई बार उनको एक साधक के ऊपर तरस आता है, दे पिटी ऑन अ प्रैक्टिसिंग डिवोटी, और वो भी युवावस्था में, तुमने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, ये नहीं करते वो नहीं करते, ये नहीं पीते वो नहीं पीते, तो ऐसे करते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? बेचारा। इस्कॉन ने क्या बना दिया इसको। तो प्रश्न है कि बेचारा कौन है? बिना चारे के कौन है? ठीक है, तो हमें उनसे कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, परंतु यहां पर ब्रह्मा जी जो हमें सिखा रहे हैं कि तपस्या का स्वरूप क्या होना चाहिए, अव्यलीक व्रत। और इस श्लोक में, आज के श्लोक में, ब्रह्मा जी ने अब ये श्रीमद् भागवत का ज्ञान अपने पुत्र नारद मुनि को दिया, अर्थात ब्रह्मा जी अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि व्यक्ति की साधना कैसी होनी चाहिए और यहां प्रचार कैसा होना चाहिए। ब्रह्मा जी इज टीचिंग अबाउट साधना एज वेल एज प्रीचिंग। तो इस अध्याय के शुरुआत में ब्रह्मा जी ने अपनी साधना का स्वरूप बताया, अब अपने प्रचार का स्वरूप बता रहे हैं, क्योंकि जब तक हमारी साधना ठीक नहीं तब तक प्रचार ठीक नहीं होगा, और यदि प्रचार नहीं हो रहा तो साधना का फायदा क्या? तो ये दोनों इंटरडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर अपने पर है, साधना और प्रचार। तो यहां पर ब्रह्मा जी का प्रचार कैसा है नारद मुनि को प्रचार, अब देखिए नारद मुनि ने किन किन को प्रचार किया वो देखिए। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, प्राचीनी बरही, वाल्मीकि मुनि, नलकुवर मणिग्रीव, कौन कौन महान ऐसे ऐसे भक्त हुए, ऐसे ऐसे महानुभाव हुए जिनको कृष्ण भक्ति में नारद मुनि लाए। तो ये पूछा जाए, नारद मुनि को किसने प्रचार किया यहां इस श्लोक में? जैसे कई बार इस्कॉन में हम देखते हैं कि किसी एक महान प्रचारक के वजह से बहुत से बड़े बड़े प्रचारक आ जाते हैं। जैसे राधा गोपीनाथ मंदिर में राधेश्याम प्रभु, गौरांग प्रभु, परमहंस प्रभु, ऐसे बड़े बड़े प्रचारक, जब इनके विषय में हम लोग सुनते हैं तो इतने बड़े बड़े प्रचारक, फिर जब देखा जाता है कि इनको कौन लाए, तो इनको देवामृत प्रभु, ये कौन है? जब इनके बारे में सुनते हैं तो लगता है कि अरे ये कितने महान होंगे, है तो नारद मुनि किन किन को प्रचार कर कर भक्ति में लाए, और नारद मुनि को प्रचार कर रहे हैं यहां ब्रह्मा जी। तो सोचिए ब्रह्मा जी किस प्रकार के प्रचारक होंगे। ऐसे ही तो नहीं वो पूरे संप्रदाय के फाउंडर आचार्य बनाए गए, उनके नाम से ये संप्रदाय शुरू हुआ है। तो इस श्लोक में कहा गया है प्रोक्तम भगवत प्राह। प्रोक्तम का अर्थ है जिसे वक्ता या प्रोक्ता, बोलना, वर्णित या वर्णन करना। प्राह, प्राह का अर्थ है कहा, पुत्राय अपने पुत्र से, भूतकृत ब्रह्मांड के सृष्टा अर्थात ब्रह्मा जी। परंतु इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द है प्रीत। ये ध्यान देने लायक है, प्रोक्तम भगवता प्राह प्रीत, कि ब्रह्मा जी ने प्रचार किया नारद मुनि को कैसे? प्रीति से। यहां पर श्रील प्रभुपाद इसका अनुवाद करते हैं संतुष्ट होकर, या अंग्रेजी में कहेंगे विथ फुल सैटिस्फैक्शन, पूर्ण संतुष्टि के पश्चात ब्रह्मा जी ने, या पूर्ण संतुष्टि के साथ ब्रह्मा जी ने प्रचार किया। तो ब्रह्मा जी क्या सिखा रहे हैं कि एक प्रचारक को संतुष्ट होना चाहिए, किसमें? केवल इसी में संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए कि हाँ अब मेरी दीक्षा हो गई, अब मुझे एक नाम मिल चुका है, जनेऊ भी मिल चुका है, और क्या है हासिल करने के लिए, उसे संतुष्टि नहीं कहते। संतुष्टि का अर्थ यहां पर श्रील प्रभुपाद ये कहना चाहते हैं कि ब्रह्मा जी के मन में और कोई विकल्प नहीं था, भगवान श्री कृष्ण भगवान है या और कोई भगवान है, कृष्ण भक्ति के अलावा और कोई भक्ति उच्चतर है, उनके अंदर कोई संशय नहीं था। ही वॉज फुल्ली कन्विंस्ड अबाउट कृष्णा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है प्रचारक का, कि वो प्रचारक कितना ज्यादा विश्वास रख रहा है भगवान की भक्ति पर, तब जाकर वो विश्वास वो दूसरे को दे पाएगा। जैसे श्रील प्रभुपाद का विश्वास, श्रील प्रभुपाद इतने यशस्वी प्रचारक कैसे रहे? ऐसा नहीं कि श्रील प्रभुपाद कोई आजकल के जो पब्लिक स्पीकर्स हैं या जो मोटिवेशनल स्पीकर्स जिनको बोलते हैं, कि बाहरी रूप से बहुत कलात्मक दृष्टि से प्रचार करना, स्किलफुली प्रीचिंग, प्रभुपाद में वो नहीं इतना देखा जाता था। जैसे कई बार आप देखो प्रचारक वो अलग अलग तरीके से, कई भारत में आप देखो अलग अलग तरीके से भागवत सप्ताह वगैरह करते हैं, तो कीर्तन पार्टी रेडी रहती है, तो बीच बीच में उनकी जो कथा चलेगी तो एक उंगली के इशारे पर कीर्तन शुरू होगा उस प्रसंग के अनुसार। जैसे मुझे याद है हम कुछ वर्ष पहले बद्रीनाथ गए थे, तो वहां पर एक भागवत कथा चल रही थी, तो हम देखने गए कि भागवत कथा में क्या हो रहा है यहाँ पे। तो वहां देखा कि बड़ी कीर्तन मंडली सजाई गई है, कथाकार आसन पर आरूढ़ हैं और वो कथा सुना रहे थे गंगा कैसे अवतीर्ण हुई पृथ्वी पर, क्योंकि हिमालय पर कथा चल रही तो गंगा जी का वर्णन तो करना ही है। तो पूरी कथा में घोड़ों का कुछ वर्णन था, तो घोड़ों के वर्णन के लिए कुछ उस कीर्तन मंडली में ऐसे व्यक्ति थे जो घोड़ों की आवाज निकाल सकते थे। इनको जस्ट एक इशारा किया तो एक व्यक्ति माइक पर घोड़े की आवाज निकालना शुरू की, और वो इतनी अच्छी से आवाज निकाल रहा था, सभी को लग रहा था कि कहीं से घोड़े आ रहे हैं। तो 5 मिनट तक घोड़ों की आवाज चल रही। अब देखिए इसलिए ये सब जगे रहते हैं, बीच में घोड़ों की आवाज, गधों की आवाज, ये बकरी की आवाज और फिर कथाकार की आवाज भी। श्रील प्रभुपाद ने इस प्रकार से अपने प्रचार का माध्यम नहीं बनाया। तो प्रभुपाद इतने असरदार तरीके से प्रचार कैसे कर पाए? हाउ वॉज ही सो इफेक्टिव? क्योंकि यहां पर ब्रह्मा जी इतने इफेक्टिव प्रीचर कैसे, श्रील प्रभुपाद कैसे, इतने सारे आचार्य कैसे? एक तो उनकी साधना, प्रचार से पहले उनकी साधना, अव्यलीक व्रत, बिना किसी हेतु के जो व्रत का पालन करे वो, अर्थात अन्य अभिलाषित शून्यम जो श्लोक है शुद्ध भक्ति का वो। और यहां पर पूर्ण विश्वास भगवत तत्व, कृष्ण तत्व पर पूर्ण विश्वास। श्रील प्रभुपाद को कितने बड़े बड़े विद्वान वैज्ञानिक ये आकर श्रील प्रभुपाद के साथ वार्तालाप करते, बड़े बड़े वैज्ञानिक जिन्होंने पीएचडी डॉक्टरेट हासिल किया है वो आकर श्रील प्रभुपाद के साथ तर्क वितर्क करते। श्रील प्रभुपाद टस से मस नहीं होते। श्रील प्रभुपाद ने कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं पढ़ा था। हाँ, श्रील प्रभुपाद पढ़े लिखे थे, परंतु इन वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से या इनकी तुलना में श्रील प्रभुपाद कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक नहीं थे, परंतु इनके मुख पर श्रील प्रभुपाद साफ साफ कहते थे, अ चिकन इज अ बेटर साइंटिस्ट देन यू, बिकॉज अ चिकन कैन प्रोड्यूस एग, यू कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग विच हैज लाइफ इन इट। इनके मुंह पे श्रील प्रभुपाद बोलते थे। तो इतना विश्वास, इसका जब श्रील प्रभुपाद का विश्वास देखते, और श्रील प्रभुपाद देखिए गए हैं अमेरिका में, अमेरिका में श्रील प्रभुपाद गए और इन अमरीकी युवकों को श्रील प्रभुपाद चार नियम बता रहे हैं। कई बार हमें थोड़ा हिचकिचाहट होती है भारतीय युवकों को चार नियम बताने में, कि पता नहीं लोग समझेंगे कि नहीं, ये क्या सोचेंगे, पता नहीं वापस आएगा कि नहीं। ये श्रील प्रभुपाद वहां पर इन अमरीकी युवकों को, और वो भी साधारण युवक नहीं थे ये अमरीकी, ऐसे नहीं कि क्रिश्चियन परिवार में रोज चर्च जाने वाले और बहुत ही धार्मिक नवयुवक अमेरिका के हिप्पी, जो अलग अलग तरीके के व्यसन अपने शरीर में डाले हुए, इनको श्रील प्रभुपाद ने चार नियम और भगवद गीता, एक मैं प्रवचन सुन रहा था श्रील प्रभुपाद 1966, श्रील प्रभुपाद 1965 में अमेरिका में आए और 1966 में श्रील प्रभुपाद लेक्चर दे रहे हैं चैतन्य चरितामृत पे। कौन बैठे सामने? कोई एलएसडी लेकर बैठा है, कोई कोकेन और हीरोइन ये सब लेके सामने बैठे हैं। चैतन्य चरितामृत, छह गोस्वामियों का वर्णन, पंच तत्व, इन सब की कथाएं, और वो भी चैतन्य चरितामृत आदि लीला। यदि आदि लीला आप पढ़े हो तो चैतन्य चरितामृत आदि लीला में जो हार्डकोर फिलॉसफी है वो कई बार हम हमारे लिए, हम साधकों के लिए जो इतने वर्षों से भक्ति में है, उनके लिए बहुत कठिन जाता है वो समझना। तो श्रील प्रभुपाद का ये दृढ़ विश्वास, प्रीतः, इसलिए जब उस प्रीति से, उस संतुष्टि से, उस दृढ़ विश्वास से श्रील प्रभुपाद ने प्रचार किया, तब जाकर इन सभियों को लगा कि ये व्यक्ति इतना ज्यादा कन्विंस्ड है जो भी कुछ कर रहा है। जैसे श्रील प्रभुपाद के एक सन्यासी शिष्य हैं हनुमत प्रेषक महाराज। ये हनुमत प्रेषक महाराज ये एक वैज्ञानिक, पहले भी एक वैज्ञानिक और बहुत साइंटिफिक इनका बेंट है, बहुत विद्वान, इस्कॉन में आने से पहले भी ये बहुत बड़े विद्वान थे और अभी इनका प्रीचिंग वो साइंटिफिक तरीके से बहुत अच्छा चलता है। तो हनुमत प्रेषक महाराज बता रहे थे कि सर्वप्रथम उन्हें कृष्णा बुक हाथ आई पढ़ने के लिए, और उस समय कृष्णा बुक एक वॉल्यूम में नहीं आया करती थी, तीन वॉल्यूम में आया करती थी। और इन्हें जो सेकंड वॉल्यूम मिली कहीं से, बुक डिस्ट्रीब्यूटर ने दी, तो सेकंड वॉल्यूम इन्हें मिली। तो सेकंड वॉल्यूम में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, फर्स्ट चैप्टर जो सेकंड वॉल्यूम का, उसमें लिखते हैं, सो इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव एक्सप्लेन्ड कृष्णा डिड दिस डिड दैट। तो अब ये देख रहे हैं प्रीवियस चैप्टर क्या है इसका, इनको पता ही नहीं कि इसके पहले भी एक वॉल्यूम, और कुछ पता नहीं कृष्ण कौन है, प्रीवियस चैप्टर छोड़ दीजिए, और ये क्या क्या लीलाएं, द्वारका में 16,108 रानियां, महल, समुद्र के बीच में ये सब कुछ, और एक रात में भगवान ने ये सब कुछ वहां पर खड़ा किया, पूरा पूरी द्वारका नगरी, पिछले रात मथुरा में, फिर वहां से सुबह सब लोग उठे तो द्वारका में, ये सब कुछ पढ़ रहे हो। तो ये बता रहे थे इनका, अब सोचिए कि आप कुछ नहीं जानते कृष्ण भक्ति के बारे में और सर्वप्रथम ये कृष्ण बुक से ये सब पढ़ रहे हैं आप, तो आपके मन में क्या विचार आएंगे? तो महाराज बोल रहे थे कि इनके मन में विचार आया, इधर दिस हैज टू बी द एब्सोल्यूट ट्रुथ, ये जो कुछ बोला गया है इस किताब में, इधर दिस हैज टू बी द एब्सोल्यूट ट्रुथ और दिस हैज टू बी एब्सोल्यूट लाई। इन ईदर केस दिस इज एब्सोल्यूट। या तो ये परम सत्य होना चाहिए या परम झूठ या परम असत्य, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि कोई यदि असत्य भी बोले तो इतना डिटेल में कैसे बोल सकता है असत्य। हाउ कैन अ लाई बी सो डिटेल्ड? और ये बात सही है, वो बोल रहे थे कि अ लाई हैज टू बी स्पोकन इन सच अ वे दैट इट इज बिलीवेबल बाय अदर पर्सन, है ना। जैसे मान लीजिए मुझे कोई पूछे कि प्रभु जी आपकी उज्जैन यात्रा कैसी रही, बोला हाँ बहुत अच्छी, आपका आपका सफर कैसा रहा, बस मैं यहां रात को अपने कमरे में सोया, सुबह मैं उज्जैन उठा। तो वो क्या सोचेगा, प्रभु जी शायद नींद आपको ठीक से नहीं हुई रात। यदि मैं ये सब बोलने शुरू कर दूं कि उज्जैन सब हम उड़ के गए थे, और वहां पर हमने प्रसादम में सबको एक एक कैप्सूल दिया, वो कैप्सूल खोला तो दाल, ये कैप्सूल खोला चावल, ये कैप्सूल खोला सब्जी, सब जानकीनाथ प्रभु की दिव्य लीला। तो झूठ भी यदि कोई बोल रहा है तो कम से कम ऐसा झूठ बोले कि दूसरा व्यक्ति विश्वास करे कि ये सच बोल रहा है। वो जैसे यहां की भाषा में बोलते ना फेंकना, तो ये महाराज बोल रहे थे कि इफ इट हैज टू बी अ लाई इट हैज टू बी बिलीवेबल लाई, बट बिकॉज दिस लाई इज ऑल्सो अनबिलीवेबल देयरफॉर दिस हैज टू बी एब्सोल्यूट लाई। इसलिए देखिए भगवान इस प्रकार की लीलाएं करते हैं ताकि नास्तिक भी संतुष्ट रहें। उनको बोलने के लिए चाहिए ना, क्या एक 7 वर्षीय बालक इतना बड़ा पर्वत उठाएगा। यदि भगवान एक छोटी सी ईंट उठाते तो नास्तिकों के लिए कुछ बोलने के लिए नहीं रहता। तो भगवान ने गोवर्धन धारण किया नास्तिकों को भी संतुष्ट करने के लिए, ठीक है तुम मुझे गाली दो तो भी खुल के दो, तुम भी खुश। अर्थात भगवान किसी ना किसी प्रकार से सबको उनका ही नाम बुलवाना चाहते हैं। तो हनुमत प्रेषक महाराज ने कहा कि उन्होंने जब उस पुस्तक में श्रील प्रभुपाद का विश्वास देखा, उन्होंने उस उन वाक्यों में कृष्ण बुक के वाक्यों में श्रील प्रभुपाद का विश्वास, दृढ़ विश्वास देखा कि ये व्यक्ति जो लिख रहा है इसे कोई पड़ी नहीं कि कोई व्यक्ति क्या सोचेगा इनके बारे में, इसे कोई पड़ी नहीं इस लेखक को कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे मैं ये सब लिख के दूंगा। तो उनको कई बार हमें कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट या ऐसे विद्वान लोग आ जाते हैं हमारे कार्यक्रम में, तो इनको हमें ये सब बोलने में हिचकिचाहट होती है कि ये भगवान ने सृष्टि की, ब्रह्मा जी 4 सर वाले, और वो भगवान के नाभि से उत्पन्न हुए, और उन्होंने पूरी सृष्टि की, 84 लाख योनियां, ये सब कुछ। कई बार हमें लगता है कि इन्हें पहले बताते हैं कि कैसे ये भौतिक संसार दुखालय है, ये समझ में आएगा इनको थोड़ा, श्रीमद् भागवत का 2रा स्कंद खोल के सुनाएंगे इनको तो ये मेरी खिल्ली उड़ाएंगे। परंतु प्रभुपाद को हनुमत प्रेषक महाराज कह रहे हैं कि प्रभुपाद की जो लिखी हुई पुस्तक उन्होंने पढ़ी तो उनके मन में ये विचार आए कि ये व्यक्ति अपनी इमेज की चिंता नहीं कर रहा, तो या तो ये व्यक्ति बहुत ही शुद्ध होना चाहिए या बेशरम होना चाहिए। इधर ही हैज टू बी एक्सट्रीमली ऑनेस्ट एंड प्योर, और एल्स ही हैज टू बी शेमलेस। ये दो ही व्यक्ति परवाह नहीं करते। अंततः फिर जब उन्हें पता लगा तो फिर शरणागत हुए श्रील प्रभुपाद को। तो यहां पर ब्रह्मा जी के उदाहरण से हम ये दो सीखते हैं कि साधना कैसी होनी चाहिए, अव्यलीक वृत्त, और यहां पे प्रचार कैसा होना चाहिए, अर्थात साधना और सेवा। प्रचार का अर्थ सेवा, प्रचार का अर्थ केवल लेक्चर देना नहीं है। जो भी सेवा हम भगवान की कर रहे हैं वो एक ना एक प्रकार का प्रचार है। तो यदि ये प्रश्न पूछा जाए कि साधना और सेवा में महत्वपूर्ण क्या है, दोनों महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी सेवा प्रीति से, जैसे यहां पर ब्रह्मा जी का प्रचार प्रीति से हो रहा है। भगवद गीता का वो प्रसिद्ध श्लोक है 10वें अध्याय का, जिसमें भगवान साधना के विषय में भी बोलते हैं, कीर्तन के विषय में बोलते हैं, और ये शब्द प्रीति उन्होंने इस्तेमाल किया है। कौन सा श्लोक है? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, कि भगवान का सतत कीर्तन होना चाहिए परंतु प्रीति के साथ। यहां पर भी प्रचार हो रहा है प्रीति के साथ, प्रेम के साथ। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत ही सुंदर वाक्य लिखते हैं। ब्रह्मा ने नारद को पहले यह भी सलाह दी थी कि उन्होंने जो उपदेश दिया है उसका वे विस्तार करें। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी को संक्षेप में इसका उपदेश दिया, किंतु शिष्य रूप गोस्वामी ने इसको अत्यधिक विस्तार दिया। इसके बाद इसी विषय को जीव गोस्वामी ने और फिर विश्वनाथ चक्री ठाकुर ने विस्तार दिया। हम इन्हीं अधिकारियों के पदचिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। यहां पे श्रील प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी को उपदेश दिया भगवान ने संक्षेप में चतुश्लोकी, ब्रह्मा जी ने इसका विस्तार कर नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने और विस्तार किया और कहा ब्रह्मा जी ने कि इसका विस्तार करो। यहां पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने 6 गोस्वामियों को उनको अपना दर्शन दिया, उनको संक्षिप्त रूप में ज्ञान दिया गौड़ीय वैष्णविज्म का, और फिर 6 गोस्वामी ने कितने ग्रंथ, कैसा प्रचार किया उन्होंने ग्रंथों और मंदिरों की स्थापना करने के पश्चात। अर्थात यहां पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं उन्हीं के पद चिन्हों पर हम भी चल रहे हैं, कि श्रील प्रभुपाद को उनके गुरु महाराज ने क्या कहा, प्रीच दिस मैसेज ऑफ चैतन्य महाप्रभु इन इंग्लिश लैंग्वेज, बस इतना ही कहा। अब श्रील प्रभुपाद ने जो मंदिरों की स्थापना की, अमेरिका गए, भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर से प्रभुपाद ने ये नहीं पूछा अब बताओ कौन सी कंट्री में जाऊं, कितने इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, कौन से में जाऊं, लंदन जाऊं, यूके में अलग अलग और कंट्री में जाऊं, अमेरिका में कहां जाऊं। जैसे ब्रह्मा जी को तप, ऐसा नहीं ब्रह्मा जी अब बोलो तप कैसे करूं, कहां करूं। अर्थात यहां पर यह बताया जा रहा है कि एक शिष्य की योग्यता क्या होनी चाहिए। ब्रह्मा जी को तप कहा, ब्रह्मा जी ने उसका विस्तार किया बुद्धि लगाकर। तो प्रभुपाद कहा करते तीन प्रकार के सेवक होते हैं, या हम चार प्रकार के ले सकते हैं। जो सबसे निम्नतम वो उसको कुछ कहा जाए तो उसका उल्टा करे। वो गुरु और उसका चेला घोड़े के ऊपर, वो कथा है। उसको जो कहा जाए उसका उल्टा करे। उसको बोला गया जो भी घोड़े से गिरे उठाओ, तो उसने घोड़े का मल उठाना शुरू कर दिया। तो ये है सबसे निम्नतम श्रेणी। उसको कुछ कहा गया तो उल्टा किया उसका। इससे थोड़ा ऊंचा है, उसको कुछ कहो नहीं करता वो कुछ भी। उसको कितना भी बोलो कुछ नहीं करेगा वो। कम से कम कुछ गलत तो नहीं किया उसने, कुछ नहीं किया। नो प्रॉफिट नो लॉस। फिर इससे थोड़ा ऊंचा वो शिष्य होता है जिसको गुरु कुछ कहे वो यथारूप करता है वैसा, परंतु कहने के बाद करता है। और इससे ऊंचा बिना कहे जो गुरु के भाव को जानता है और बिना कहे जो करता है, श्री प्रभुपाद के वो टॉप मोस्ट डिसाइपल। अर्थात ये भी यहां पर हम समझ सकते हैं कि जब कुछ कहा जाए और उसको, जैसे श्रील प्रभुपाद को कहा गया और प्रभुपाद ने फिर इसका विस्तार किया, प्रभुपाद ने अब मंदिरों की स्थापना की, अब इंग्लिश लैंग्वेज में प्रीचिंग करने के लिए कहा था, और प्रभुपाद को एक और आदेश दिया था, वेन एवर यू हैव मनी प्रिंट बुक्स। अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस समय प्रभुपाद को यह कहे कि गौड़िया मठ में इतना पॉलिटिक्स चल रहा है कि मैं इसका मार्बल बेच के बुक्स प्रिंटिंग करना चाहता हूं, नहीं चाहिए मुझे मंदिर। तो अब श्रील प्रभुपाद ने इतने बड़े बड़े मंदिर क्यों बांधे? वो बोल सकते थे मेरे गुरु महाराज तो खिलाफ थे मंदिरों के, और उन्होंने तो केवल बुक्स प्रिंटिंग करने के लिए कहा था। तो प्रभुपाद, और केवल इंग्लिश स्पीकिंग, तो प्रभुपाद ने पाकिस्तान में भी भेजा लोगों को प्रचार करने के लिए, अफ्रीका में भेजा, वहां पर स्वाहिली लैंग्वेज में प्रीचिंग करो। आप जानते हो कोई भाषा भी है ऐसी? 80 से ज्यादा भाषाओं में प्रभुपाद ने प्रचार किया। तो कोई पूछ सकता है ये कैसे शिष्य है जो कहा गया यथारूप नहीं किया? क्या बोला था इनको इंग्लिश में प्रीचिंग करने के लिए? ये क्या है, उर्दू में प्रीचिंग चल रहा है, मुसलमानों को प्रीचिंग चल रहा है, ये क्या है? क्या श्रील प्रभुपाद प्रामाणिक शिष्य थे या नहीं अपने गुरु के? क्या कहोगे? ये यहां पे बता रहे हैं तात्पर्य में कि जो सबसे उच्चतम शिष्य होता है वो गुरु के भाव को जानता है। ही नोज द मूड ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। अब देखिए, श्रील प्रभुपाद के शिष्य, श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को भी कहा, यू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी एंड यू राइट बुक्स इन योर ओन लैंग्वेज। प्रभुपाद का यह आदेश अपने शिष्यों को कि अपनी भाषा में जो तुमने मुझसे समझा है अपनी भाषा में लिखो। तो अब श्रील प्रभुपाद के जो प्रामाणिक शिष्य हैं, जो प्रभुपाद के पदचिन्हों पर चलते हुए, सबसे पहला प्रश्न ये कई लोग पूछते हैं कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने गौड़िया मठ स्थापित किया, श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन क्यों स्थापित किया, इस्कॉन नाम क्यों दिया? क्या ये गुरु के आदेश के विरुद्ध कुछ किया उन्होंने? नहीं। प्रभुपाद जानते थे कि प्रभुपाद यदि अंग्रेजी में प्रचार कर रहे हैं तो वहां पर यदि अपनी संस्था का नाम वो गौड़िया मठ रखते तो न तो किसी को गौड़िया समझ में आता, न मठ समझ में आता। परंतु फिर भी श्रील प्रभुपाद ने उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इंग्लिश में इस संस्था का नाम रखा, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कईयों ने ये सलाह प्रभुपाद को दी थी कि कृष्णा हटा के गॉड लगाओ, प्रभुपाद ने कहा नहीं। इसमें हम देख सकते हैं कि कैसे प्रभुपाद सिद्धांत को बरकरार रखे और प्रभुपाद ने अपनी बुद्धि लगाई। तो ये है एक प्रामाणिक शिष्य जो सिद्धांत को बरकरार रखे, अपने गुरु द्वारा दिए गए सिद्धांत को बरकरार रखे और उसमें वो अपनी बुद्धि भी लगाए। इंटेलिजेंस, प्रभुपाद ने कहा इन इस्कॉन वी नीड टू थिंग्स टू एक्सपैंड, गुड इंटेलिजेंस, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, या श्रील प्रभुपाद मेरे ख्याल से ईशोपनिषद में व्याख्या करते हैं एंथुजियाज्म विथ इंटेलिजेंस, एनओआई में एंथुजियाज्म विथ इंटेलिजेंस। एक है एंथुजियाज्म विदाउट इंटेलिजेंस, दैट इज मंकी, बंदर, और एक है इंटेलिजेंस बट नो एंथुजियाज्म। ओ कई होते हैं जिनके अंदर बुद्धि बहुत होती है परंतु कोई उत्साह नहीं कुछ करने का, परंतु श्रील प्रभुपाद अपने उदाहरण से क्या सिखाएं कि एक मिशन को चलाने के लिए ये दो बहुत आवश्यक हैं, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वो केवल ज्ञानियों के लिए है, वो सब हम तो भक्त हैं, हमको बुद्धि की कोई जरूरत नहीं है, ये सब बुद्धि, ये सब ज्ञान, ये सब है, ये सब जो निचले योग हैं उनके लिए, हम तो शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध भक्ति, हम गोलोक वृंदावन जाने वाले हैं, और हम ये सब ज्ञान बुद्धि इन सब से परे। श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेट करते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस इज बुद्धि योग, भगवत गीता में बुद्धि का अर्थ क्या है, इंटेलिजेंस। इसलिए बुद्धि से जब कोई शिष्य गुरु की सेवा करता है तो वो उसके आंतरिक प्रेम का एक लक्षण है, अर्थात विस्तार करके जब वो सेवा करता है, उसे जो कहा जाए यथा रूप वो जो करेगा वो तो ठीक है, परंतु जब उससे ज्यादा वो कुछ करता है, अर्थात वो बुद्धि लगा रहा है और वो सिद्धांत को बरकरार रखते हुए बुद्धि लगाते हुए जब ज्यादा करता है गुरु के लिए, उसे कहते हैं सही प्रेम। जैसे कि कोई होटल जाता है तो होटल में वेटर खाना परोसता है और मां खाना परोसती है अपने बेटे के लिए, क्या अंतर है दोनों में? होटल में वो बुद्धि से परोस रहा है, प्रेम नहीं है उसमें कुछ भी, कोई प्रेम नहीं है उसके अंदर। बुद्धि से कौन सा आइटम कैसे सजा के रखना चाहिए ताकि ये और मांगे, और मांगेगा तो और पैसा भरना पड़ेगा, ज्यादा पैसा भरना पड़ेगा तो मेरी तनख्वाह चलती रहेगी, तो उसमें इंटेलिजेंस है, प्रीति नहीं है। और मां जो अपने बेटे को परोसती है उसमें इंटेलिजेंस भी है और प्रीति भी है कि क्या मेरे बेटे के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और स्वादिष्ट और उसके साथ प्रेम से मैं खिलाऊंगी। जैसे देखिए आजकल ये साइंटिस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका रिसर्च कर रहे हैं, एआई उसको बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। परंतु भक्ति में ये कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो ही नहीं सकता, या आर्टिफिशियल लव, आर्टिफिशियल लव कुछ कोई सिद्धांत हो ही नहीं सकता, लव कैन नेवर बी आर्टिफिशियल। जैसे वो आर्टिफिशियल हो गया, कृत्रिम हो गया, वो प्रेम है ही नहीं, उसकी परिभाषा छूट जाती है प्रेम की। तो जैसे सर्दी के मौसम में आप देखिए पहले घरों में स्वेटर बुना करते थे, जो गृहिणी स्वेटर बुना करती थी परिवार वालों के लिए। हमारा यह अनुभव रहा है कि जब कोई अपने हाथ से स्वेटर बुन के किसी को देता है भेंट, उसमें और मार्केट से स्वेटर खरीद के दिया हुआ, उन दोनों में क्या अंतर है? एक मशीन मेड है और एक हैंडमेड है। एक में इंटेलिजेंस है, एक में प्रीति है। हां, यहां पर प्रीति, जो प्रेम जिसकी हम चर्चा करते हैं, वो प्रेम जो है इंटेलिजेंस के साथ यदि विस्तारित किया जाए उस प्रेम को, अर्थात वो इंटेलिजेंस कौन सी है? ददामि बुद्धि योग, भगवान द्वारा दी गई बुद्धि है वो। और भगवान वो बुद्धि कब देते हैं? जब प्रीति को देखते हैं। तो यहां पर ब्रह्मा जी ये प्रचार इतनी असरदार तरीके से क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि इनके अंदर वो प्रीति हुई, कौन से तप करने की वजह से? अव्यलीक तप। तो अव्यलीक तप या अव्यलीक व्रत करने की वजह से प्रीति जागृत होती है, और प्रीति के वजह से वो दिव्य बुद्धि योग। और यही श्रील प्रभुपाद का रहस्य था। श्रील प्रभुपाद यशस्वी हुए इस फॉर्मूला के कारण। साधना विदाउट अल्टीरियर मोटिव्स विच ब्रॉट अबाउट लव, एंड दैट लव ब्रॉट अबाउट गुड इंटेलिजेंस टू एक्सपैंड कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो ये हम ब्रह्मा जी के उदाहरण से इस अध्याय में सीख रहे हैं। और इस श्लोक में जो ब्रह्मा जी ने कहा, प्रोक्तम भगवतः प्राह प्रीत पुत्राय भूतकृत, कि ब्रह्मा जी ने विस्तारित कर नारद मुनि को और विस्तारित करने के लिए कहा। और श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं जिन्होंने इस भागवत संदेश, ये जो भागवत कल्चर है, इसको अपने दिव्य बुद्धि से इसका विस्तार किया। और श्रील प्रभुपाद हमसे भी यही चाहते हैं कि हम भी हमारी साधना इस प्रकार से करें जिसमें हमें भगवान द्वारा दी गई वो शुद्ध बुद्धि मिले, जिसके द्वारा हम श्रील प्रभुपाद को और अन्य आचार्यों को प्रसन्न करें इसका विस्तार कर। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी का? प्रश्न है कि साधना और प्रचार, हमने कहा आत्मनिर्भर हैं एक दूसरे के ऊपर, तो यदि हमारी साधना ठीक नहीं तो हमें प्रचार नहीं करना चाहिए? ये उसी प्रकार से हुआ कि मेरा पेट ठीक नहीं है तो मैं खाना ही बंद कर दूंगा आज से। क्या करोगे आप? पेट ठीक नहीं है तो आज से खाना बंद? बोलो, क्या बोल, क्या करोगे आप? हाँ, पेट ठीक करोगे ना कि खाना बंद? तो यदि साधना ठीक नहीं तो साधना ठीक करनी है, प्रचार बंद नहीं करना है। और वो प्रचार करने से हमारी साधना ठीक होगी। जैसे दवाई खाने से या ठीक प्रकार के भोजन खाने से आपका पेट ठीक होगा, वैसे ही सही साधना करने से सही प्रचार होगा, और सही प्रचार करने से हमारी साधना में रुचि आएगी। इस प्रकार से ये इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। ये हम नहीं कह रहे कि हम हमारा 16 माला नहीं हो रहा है और 4 नियम पालन नहीं हो रहे हैं और हम माइक पर जोर जोर से लोगों को बोल रहे हैं कि 16 माला का महत्व क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला का महत्व क्या है, और 4 दिन से हमारी एक माला हुई नहीं है। तो ये उस प्रकार से है कि पेट खराब है और हम रबड़ी पूड़ी खा रहे हैं, तो जितना वो पेट उस समय खराब पेट ले सके उतना उसे भोजन देना चाहिए। तो जितना हमें साक्षात्कार है हमारी साधना के द्वारा, उस साक्षात्कार के अनुसार हमें प्रचार करना चाहिए। और कोई प्रश्न? जैसे जब हम भगवद गीता से कहते हैं कि ये भौतिक संसार दुखालय है, तो इसका तो साक्षात्कार है ना, दुखालय है। और आध्यात्मिक संसार कैसे सुखालय है, इसका हम ब्रह्मा जी का साक्षात्कार सुना सकते हैं कि ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि कैसे गोलोक वृंदावन सुखालय है। ये नहीं कि कैसे मैं रोज बंसी सुनता हूं भगवान की और मैं कली भगवान के साथ रासलीला रचा कर आया हूं। ये हमारे साक्षात्कार के बाहर की बात है। हम रासलीला के बारे में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी का जो साक्षात्कार है, ब्रह्मा जी का जो साक्षात्कार है, नारद मुनि का, चैतन्य महाप्रभु का, उनका साक्षात्कार हम दे रहे हैं दूसरों को, सुना रहे हैं, यदि सुनाना भी है तो। श्रील प्रभुपाद को पूछा गया एक लाइफ मेंबर के घर में कि उन्होंने राधा कृष्ण के ड्यूटीज थे, बोले स्वामी जी कुछ रासलीला आप सुनाइए भगवान की। तो प्रभुपाद 2-3 बार कहने के बाद भी नहीं सुनाए, अंततः प्रभुपाद कहे यू मस्ट बी क्वालिफाइड टू हियर व्हाट आई एम नॉट क्वालिफाइड टू स्पीक। यहां तक कि सुखदेव गोस्वामी ने राधा रानी का नाम ही नहीं लिया। तो हमारा साक्षात्कार भक्ति में, हम जब कहते हैं, कोई हमसे पूछता है, जैसे मैं बता रहा था हाल ही में मैं मुंबई में था तो मुझे पूछा गया तुम प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते, तो मुझे ऑनेस्टली पूछा, टेल मी ऑनेस्टली यू हेट ऑनियन गार्लिक, तो मैंने कहा नो आई डोंट हेट ऑनियन गार्लिक, देन व्हाई डोंट यू ईट। तो मेरा जो थोड़ा 2 पैसे का साक्षात्कार मैंने बताया, मैंने कहा आई लाइक द पर्सन मोर देन ऑनियन गार्लिक हु हैज आस्क्ड मी नॉट टू ईट ऑनियन गार्लिक। समझ में आया आपको? श्रील प्रभुपाद जिन्होंने मुझे कहा है प्याज लहसुन न खाओ, वो मुझे प्याज लहसुन से ज्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं प्याज लहसुन नहीं खाता। अब ये यदि मैं कहना प्याज लहसुन देखते उल्टी होती मुझे, तो नहीं, वो मैं अपने साक्षात्कार के बियॉन्ड, मैं इतना शुद्ध भक्त अभी नहीं बना हूं कि कोई मेरे बगल में कोई प्याज लहसुन खा रहा है तो मुझे उल्टी हो जाएगी, दूर हटो 10 मील दूर जाओ। तो हमारा साक्षात्कार हम जानते हैं, हम कितने पानी में हैं। हाँ, तो हम उनको, यही मैं बोल रहा हूं कि हम उनको बता सकते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य बता सकते हैं। ये भावना ये होनी चाहिए कि मैं खुद भी शरणागत होने का प्रयास कर रहा हूं और मैं भगवान की वाणी सुना रहा हूं आपको, भगवान ने कहा ये। तो हम दूसरों को बड़े बड़े भक्तों का साक्षात्कार सुना सकते हैं, ये मैं बोल रहा था, यदि सुनाना भी है तो, कि ये भक्ति विनोद ठाकुर का साक्षात्कार है, ये भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर का साक्षात्कार है, ये श्रील प्रभुपाद का साक्षात्कार है, न कि उनका लेटर हेड पे हम अपना सर्टिफिकेट दूसरों को दे। और हाँ, भावना यदि ये है कि मैं यदि दूसरों को कहूंगा तो मैं खुद भी उसका पालन करना शुरू करूंगा, तो भी भावना ठीक है, परंतु उसके साथ साथ पालन करना वो ज्यादा, वो स्वस्थ अवस्था है हमारी भक्ति की। देखिए, एक शिष्य जो है वो प्लान नहीं करता कि मुझे टॉप मोस्ट डिसाइपल बनना है। इफ ही प्लान्स, दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ हिज फेलियर। श्रील प्रभुपाद ने अपनी साधना शुद्ध की, इसलिए आज के श्लोक में हमने ब्रह्मा जी के उदाहरण से क्या सीखा कि ब्रह्मा जी का जो तप था वो अहेतु की तप, शुद्ध तप था, शुद्ध भक्ति थी, जिसके वजह से भगवान अवतरित हुए, भगवान ने उपदेश दिया, भगवान ने बुद्धि दी और उसके द्वारा फिर वो सब कुछ विस्तार कर सके। तो सब कुछ कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, हम बोलते हैं ना, कृष्ण शक्ति थी, और कृष्ण शक्ति कहां से मिली? शुद्धता के वजह से। सो आवर प्लान एज अ डिसाइपल शुड बी How to become more pure. That's it. Rest Krishna will do what he wants to do through us. और श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्य, अब जैसे आप देखो भगवत गीता में जो गुरु शिष्य का लिस्ट है उसमें बहुत से आचार्य नहीं है जो हमारे परंपरा में थे, जिनका वर्णन उसमें नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि उसमें वर्णन उन गुरुओं का दिया गया है जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो श्रील प्रभुपाद को हम एक लीडर बोल सकते हैं। सो लीडर्स आर वेरी फ्यू, नॉट दैट एवरीवन हैज टू बिकम अ लीडर लाइक प्रभुपाद। वी हैव टू बिकम फॉलोअर्स, फॉलोअर भी होने चाहिए ना। And of course, Prabhupada was a proper follower, therefore he could become a proper leader. तो एक है जो missionary activities को उस scale पे ले जाते हैं और उनको विशेष रूप से भगवान की कृपा होती है, नियुक्त किए गए होते हो, जैसे श्रील प्रभुपाद के विषय में बताया गया है कि श्रील प्रभुपाद ये सेनापति नियुक्त किए गए थे नित्यानंद प्रभु द्वारा, मोर सेनापति। क्यों? क्योंकि, और भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने भी प्रभुपाद के अंदर वो देखा, इनके अंदर वो शुद्ध क्वालिटी है यथारूप करने का, तो उनको वो बुद्धि दी गई और उसके द्वारा वो एम्पावर्ड हुए। तो हमें इनके पदचिन्हों पर चलना है, इनके सिद्धांतों के, इनको इमिटेट नहीं करना है हमें। और इनकी जो शुद्धता है उसको हमें अपने जीवन में अपनाना है। सो प्लान टू बिकम प्योर, नॉट टू बिकम ग्रेट। राधानाथ महाराज एक अपने प्रवचन में बोल रहे थे, आई एम अ ग्रेट डिवोटी, व्हाई? बिकॉज आई एम सर्विंग द ग्रेटेस्ट। समझ में आया? बिकॉज आई एम सर्विंग द ग्रेटेस्ट, देयरफॉर समबडी कैन कॉल मी अ ग्रेट डिवोटी बिकॉज ऑफ माई कनेक्शन विद द ग्रेटेस्ट. समटाइम्स इट बिकम्स द अदर वे अराउंड. Krishna is the supreme personality of Godhead because I am serving him. और कोई प्रश्न? आप जिसका जप कर रहे हैं, यदि आपको विश्वास ही नहीं उन व्यक्ति के ऊपर, तो वो जप का फायदा क्या और कब तक चलेगा वो जप? आप जिसकी पूजा कर रहे हैं, जिसको दंडवत दे रहे हैं, जिस व्यक्ति को अपना सर्वस्व आप दे रहे हैं, उन व्यक्ति पर यदि विश्वास ही नहीं है तो वो कब तक चलेगा? वो उसे शरणागति कहेंगे ही नहीं, वो साधना किस काम की फिर? इसलिए आदौ श्रद्धा, सबसे पहला स्तर कौन सा है? आदौ श्रद्धा, फिर साधु संग, भजन क्रिया, ये सब कुछ आगे, और फिर अंत में कृष्ण प्रेम. तो शुरुआत श्रद्धा से, अर्थात प्रभुपाद अक्सर पूछा था, आर यू ऑल कन्विंस्ड दैट सुप्रीम कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड? आर यू कन्विंस्ड? तो वो श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा भी आना हमारे अंदर, कई जन्म उसमें लग जाएंगे. वो जैसे होता ना, कई बार कोई स्विमिंग सीखने जाता है तो वो कई साल वो छोटे से पूल में ही हाथ पैर मारने में लग जाता है, और कई बड़े बड़े स्विमर हैं वो समुद्र में तैर रहे हैं अंदर. तो ये बड़े बड़े प्रभुपाद जैसे आचार्य तो भक्ति रसामर सिंधु में तैर रहे हैं, हम छोटे से ये ना पॉन्ड फाउंटेन इसी में. लेकिन ठीक है, हमें विश्वास होना चाहिए कि हाँ, कि मैं जिस पथ में हूं वो पथ सर्वश्रेष्ठ है. मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं हूं, परंतु ये पथ सर्वश्रेष्ठ है. जो मेरे आराध्य देव है वो सर्वश्रेष्ठ है, ये विश्वास, दृढ़ विश्वास. कृष्णदास ए विश्वास कोरले तो आर दुख नाए. सुना आपने भजन? भक्तिनोद ठाकुर भजन में ये कहे हैं कि यदि कृष्णदास ए विश्वास, कि ये विश्वास यदि आ जाए कि मैं कृष्ण का दास हूं, उसमें सब कुछ छिपा हुआ है, मेरी शरणागति, मेरी साधना, मेरा प्रचार, सब कुछ, तो आर दुख ना आए, तो कोई दुख नहीं. अर्थात इसका विपरीत लॉजिक लगाएं, कृष्णदास अविश्वास सर्व दुख होए. साधना भक्ति में जितने भी दुख आएंगे, फिर वो दुख क्यों आएंगे? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पर पूर्ण विश्वास नहीं. सो मुझे बहुत अच्छा लगा हनुमत प्रेषक महाराज, इधर दिस इज एब्सोल्यूट ट्रूथ और एब्सोल्यूट लाइ, इन ईदर केस दिस इज एब्सोल्यूट. इसलिए भगवान देखिए, जब लीला भी करते हैं तो ऐसी लीला करते हैं कि कोई व्यक्ति यदि न समझ पाए, क्योंकि बुद्धि से तो बिल्कुल कोई समझ में नहीं पाएगा इसे, कि कैसे भगवान ने उठा लिया पर्वत और ये सब नहीं, प्रीति से समझना होगा, और प्रीति के बाद फिर बुद्धि. इसलिए उस श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम फिर है ददामि बुद्धि योग। पहले ये नहीं कि बुद्धि से कैसे मैं जप करूं, पहले प्रीति से फिर बुद्धि। जय श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।